Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya. Jaya Gopi Jana Vallabha Girvardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girvardhari Jaya. Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yasoda. Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yasoda. Jamna Tiravana Chari Jamna. Jamna Tiravana Chari Jamna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya. Jaya Gopi Jana Vallabha Girvardhari Jaya Gopi Jana. Yo Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yasoda. Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yasoda. Jamna Tiravana Chari Jamna Tiravana. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya. Jaya Gopi Jana Vallabha Girvardhari Jaya Gopi Jana. Jaya Gopi Jana Vallabha Girvardhari Jaya. हो यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनेताय गौरनेताय जय गौरनेताय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shyam Sundar ki, Lalita Vishakha Devi ki, Gaur Nitai ki, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की भागवत महापुराण की गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नयष्टिकी हरे कृष्णा. तो आज हम श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद और अध्याय 24 और श्लोक संख्या 13 प्राचीन वर हिसे पुत्रा प्राचीन वर हिसे पुत्रा सतद्रुत्याम दशा भवन सतद्रुत्याम दशा भवन तुल्यनाम व्रता सर्वे तुल्यनाम व्रता सर्वे धर्म स्नाता प्रचेत सह धर्म स्नाता प्रचेत सह प्राचीन वर से पुत्रा सतदुत्याम दशा भवन तुल्यनाम वृता सर्वे धर्म स्नाता प्रचेत सह प्राचीन वर से पुत्रा सतद्रुत्याम दशा भवन तुल्यनाम वृता सर्वे धर्म स्नातः प्रचेत सह। प्राचीन वर्ष पुत्र धर्म स्नाता प्रचेत सह। तुलनाम व्रता सर्वे धर्म स्नाता प्रचेत सह। प्राचीन वर्ष पुत्र सतद्रुत्याम दशा भवन नाम व्रता सर्वे धर्म स्नाता प्रचेत सह। माता प्राचीन वर्ष पुत्र सतदुत्याम दशा भवन तुल्यनाम व्रता सर्वे धर्म स्नाता प्रचेत स। माता प्राचीन वर्ष पुत्र दशा भवन धर्म स्नाता प्रचेत सह। प्राचीन वर्ष पुत्र सतद्रुत्याम दशा भवन तुल्यनाम व्रता सर्वे धर्म स्नाता प्रचेत सह। प्राचीन वर्ष पुत्र श्रतदुत्याम दशा भवन तुल्यनाम व्रता सर्वे सर्वनाता प्रचेत स। प्राचीन वर्ष पुत्र सतदुत्याम दशा भवन तुल्यनाम व्रता सर्वे धर्म स्नाता प्रचेत सह। शब्दार्थ प्राचीन वरह सह राजा प्राचीन वरही के पुत्रा पुत्र सतद्रुत्याम सतद्रुति के गर्भ से दस अभवन उत्पन्न हुए तुल्य समान नाम नाम व्रता व्रत सर्वे सभी धर्म धार्मिकता में स्नाता पूर्णतया मग्न प्रचेत सह सबों का प्रचेता नाम पड़ा सबों का प्रचेता नाम पड़ा। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की। प्राचीन वरही ने सतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए और वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए। तात्पर्य धर्म स्नाता शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि दसों पुत्र धर्म में पूर्णतः रत थे, साथ ही वे समस्त उत्तम गुणों से संपन्न थे। मनुष्य तभी पूर्ण माना जाता है जब वह पूर्णतः धार्मिक हो, अपनी भक्ति के व्रत में पूर्ण हो, ज्ञान में पूर्ण हो एवं उत्तम आचरण करने वाला हो। सभी प्रचेतागण समान रूप से सिद्ध थे। भक्ति विधान स्वामी तात्पर्य समाप्त हुआ। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्री युधपद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रसवान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीत नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्राचीन वरहसी पुत्र सद्दुत्याम दशा भवन तुल्य नाम वृता सर्वे धर्म स्नाता प्रचित सह। धर्म स्नाता प्राचीन वरही पुत्र प्राचीन वरही के पुत्र जो सत दुत्या नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए और वो क्या थे सर्वे धर्म स्नाता वो सभी धार्मिकता में पूर्णतः मग्न थे। और धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए। रूपा जी बताते हैं मनुष्य पूर्ण कब माना जाता है जब वो पूर्णतया धार्मिक हो और पूर्ण उसको ज्ञान हो और उसका आचरण भी उत्तम हो वही व्यक्ति मनुष्य कहलाता है पूर्ण मनुष्य। तो हम लोग जो ये पाठ पढ़ रहे हैं अभी स्कंद 3 अध्याय 24 जिसमें जो अध्याय 23 था उसमें पृथ्वी महाराज का चरित्र स्तुति गान जो सभी हम लोग पिछले कई महीनों से सुनते आ रहे हैं इसमें राजा पृथु के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था विजिताश्व और विजिताश्व को अंतर्धान भी कहते थे। थोड़ा इस जो 11-12 श्लोक जो निकल गए हैं उस पर थोड़ी सी समरी करते हैं। तो विजिताश्व जो थे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे बहुत ही धार्मिक थे जैसे प्रभुपाद जी ने कहा पूर्ण मनुष्य वो सब गुण उनमें थे। और अंतर्ध्यान क्यों कहते थे उनको उनका एक नाम था अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान क्यों कहते थे क्योंकि इंद्र ने जिस समय पृथ्वी महाराज यज्ञ कर रहे थे तो घोड़े को चुराया और जब वो घोड़ा चुरा के जा रहे थे तो विजिताश्व ने उनको देख लिया लेकिन देखने के बाद भी जानबूझ करके भी उनको टोका नहीं और उनसे कुछ भी नहीं कहा। और ये सब चीजें इंद्र देख रहा था कि हाँ इन्होंने मुझे देख लिया है उनको मालूम पड़ गया कि मेरी ये कमजोरी है ये जरूर मेरा प्रचार करेगा बताएगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इस बात को लेकर के इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। क्यों नहीं बताया? क्योंकि विजतासु जो जानते थे कि ये जो इंद्र हैं ये धर्मात्मा है, ये बहुत पुण्यात्मा है, भगवान के परम सेवक हैं, और अगर मैं ये सब बातें बता दूंगा तो ये अपराध हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा, ये वैष्णव हैं। तो ये ज्ञान उनको था, और ये बात सुन करके और ये देख करके दृश्य को इंद्र ने उनको ये वरदान दिया और उनको ये शक्ति प्रदान की जो उनके पास थी। उनके पास अंतर्ध्यान होने की शक्ति थी, इच्छा के अनुसार छिप सकते हैं और इच्छा के अनुसार प्रकट हो सकते हैं। तो ये उन्होंने उनके लिए दिया। उसके बाद में इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था, कौन बताएगा? शिखंडनी। उनकी पत्नी का नाम था शिखंडनी, और शिखंडनी से तीन पुत्रों को जन्म हुआ, और वो तीनों पुत्र अपना भगवत कार्य करके और स्वर्ग को चले गए, आगे कोई भी वंश नहीं चला। और उनकी एक दूसरी पत्नी थी, उसका क्या नाम था? नवस्वती। नवस्वती के हविर्धान हुए, हविर्धान। और हविर्धान के जो पुत्र थे, हविर्धान की जो पत्नी थी हविर्धानी, और हविर्धानी से हविर्धान ने छह पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े थे वरहसत, दूसरे थे गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। एक पुत्र का नाम था उनके कृष्ण। तो वरहसत जो थे आगे चल के वही प्राचीन वरही के नाम से विख्यात हुए। वरहसत बहुत शक्तिशाली राजा थे, और राजा का एक धर्म होता है प्रजा पे शासन करना, और कई निर्णय बड़े कठोर लेने पड़ते हैं जानबूझ करके भी। वो ना चाहते हैं कि मैं इतना कठोर निर्णय लूं, लेकिन वो एक धर्म से जुड़े हुए हैं, राज धर्म से जुड़े हुए रहते हैं। तो राज धर्म को ठीक ठीक पालन करने के लिए वो मजबूर होते हैं कठोर नियम लेने के लिए, कठोर शासन करने के लिए, कठोर दंड देने के लिए मजबूर होते हैं। और ये सब चीजें वरहसत को पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, राजा थे। तो उन्होंने कहा इससे कैसे छुटकारा मिले? तो वो प्राय करके हमेशा भगवान की सेवा में एंगेज रहते थे, यज्ञ आदि करने में, दान करने में, श्रवण करने में, जप करने में, हमेशा अपने आप को इतना व्यस्त रखते थे कि कोई भी व्यक्ति आता उनके पास शिकायत लेकर के तो उसका मन परिवर्तित हो जाता था। अरे जप कर रहे हैं, अभी डिस्टर्ब नहीं कर, बाद में आएंगे। फिर आया, फिर देखा अध्ययन कर, बाद में आएंगे। देखा हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बाद में आएंगे। तो धीरे धीरे वो बात बात करते करते वो जो कंप्लेंट मन में होता था वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता था और उन तक नहीं पहुंचते थे। जैसे चेतन लीला में हरदास ठाकुर के पास एक माता गई थी, तो हरदास ठाकुर बोले अब बैठिए मेरा जप पूरा करने दो। बैठ रहे, जप करते रहे, अभी नहीं हुआ, कल आए। फिर दूसरे दिन वो जप करते, धीरे धीरे वो सुन सुन के भक्त बन गई। उसकी जो चेतना थी, जिस भाव से वो आई थी, वो भाव नष्ट हो गया। तो इन्होंने एक उपाय सोचा कि भगवान की सेवा में हमेशा बिजी रहेंगे तो जो कठोर निर्णय लेना ये सब प्रजा को पता नहीं कष्ट भी होता होगा, हो सकता है अनजान में कोई गलत निर्णय ले लिया जाए, ये भी एक अपराध होता है। और वैसे प्राय करके सभी देवी देवता भी डरते हैं राजा बनने से, क्यों कि राजा बनने से कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी की बददुआएं तो लगी जाती हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो राजधर्म के कारण लग जाएं या अपने स्वधर्म के कारण लग जाएं। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं इस प्रकार से राजपाट करूं और राज शासन करूं। तो वो हमेशा इससे बचने के लिए भगवान की सेवा में हमेशा रहते थे, और ये परंपरा चली आ रही है। जैसे सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? ध्यान। और त्रेता युग में तपस्या, द्वापर में अर्चना पूजा, और कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ है। वो भी यज्ञ, भगवान की पूजा करना भी यज्ञ है, श्रवण करना भी यज्ञ है, भगवान का कीर्तन करना भी यज्ञ है, भगवान की कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी लीला का स्मरण करना, एक्टिविटीज का ध्यान करना, ये सब सत्कर्म है। तो उसी का पालन करते हुए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने इसको आगे बढ़ाया, संकीर्तन यज्ञ, जगह जगह जा करके प्रचार किया, प्रसार किया और मंदिर बनाए। अब देखिए एक बड़े महत्वपूर्ण बात है, यज्ञ कौन करता है? यज्ञ जो करते हैं वो किस जाति के होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि जब मैं यज्ञ करने जा रहा हूं तो ब्राह्मण तो चाहिए, तभी तो यज्ञ होगी। तो प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण बनाए। आज पूरे विश्व में कितने ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण दीक्षा दिया और उनको उसके योग बनाया कि तुम अब संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं, तुम अर्चना पूजा कर सकते हैं, विग्रह की पूजा कर सकते हैं, गायत्री जप कर सकते हैं, अब तुम ब्राह्मण प्रमाणिक बोनाफाइड ब्राह्मण बन गए। ये प्रभुपाद जी ने किसके लिए किया? कि संकीर्तन यज्ञ के लिए, कि लोग संकीर्तन यज्ञ कर सकें। और जगह जगह मंदिर बनाए, बहुत सारे उद्देश्य मंदिर बनने के, प्रचार प्रसार, लेकिन उसमें एक संकीर्तन यज्ञ भी एक उद्देश्य है। जहां मंदिर बनेगा वहां कीर्तन होगा ही होगा, सभी लोग आएंगे, सभी लोग जुड़ेंगे। तो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में एक ऐसा घर बसाया, एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व समा गया। उन्होंने पूरे विश्व को एक घर बना दिया, और वो घर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावना भावित कर दिया, पूरे विश्व में कृष्ण भावना भावित हो, ये उद्देश्य लेकर के प्रभुपाद जी ने इस संघ की स्थापना की, संकीर्तन यज्ञ चलाया। जो व्यर्थ चला रहे थे उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो उसके बाद में महाराज वर्षित आगे चल के प्राचीन वरी के नाम से जाने गए, और उन्होंने जो आज का जो श्लोक है, सतद्रुत्या उनकी पत्नी का नाम था। किनकी पत्नी का? वर्षित, जो प्राचीन वरी थे। और जब ये हवन हो रहा था, हवन भी एक यज्ञ है, संस्कार है, संस्कार देते हैं, फेरे लेते हैं, कुछ वचनबद्ध होते हैं, नियम कानून से बंधते हैं, किस लिए? कि अब हमें शुद्ध सात्विक जीवन जीना है, पूर्ण धार्मिक बनना है, पूर्ण मनुष्य बनना है, उत्तम चरित्र वाला बनना है। तो अग्नि को साक्षी करते हुए अगर हम कभी गलती करें तो ये चीज हमें याद आ जाए, अग्नि कसम खाई थी, नहीं गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो कई बार ऐसा वर्णन आता है कि रक्षक भक्षक होता है। जब हवन करके फेरे ले रहे थे तो सतद्रुत्या इतनी सुंदर थी, और प्राय करके शादी के मंडप में जब स्त्री श्रृंगार करती हैं या जो भी वर श्रृंगार करते हैं, स्वाभाविक वो जितने सुंदर हो सकते हैं उतने सुंदर होते हैं उस समय। उससे ना पहले कभी सुंदर इतने हो सकते हैं ना पीछे। उस समय कुछ विशेष स्नान कराए जाते हैं, विशेष उनको श्रृंगार पहनाया जाता है, विशेष मेकअप होता है, तो वो जितने सुंदर हो सकते हैं उतने लगते हैं। तो जिस समय वो परिक्रमा या जो फेरे ले रहे थे उस समय अग्निदेव के मन में ये भाव आ गया कि कितनी सुंदर स्त्री है, उसी की कसम खाते हैं, उसी की फेरे ले रहे हैं, उसी के सामने सात वचन दे रहे हैं, अब वो ही विचलित हो गए, सोचो। तो ये जो कामना है, जो माया है, जो भगवान में हम लोग जो मोहित होते हैं, ये बहुत प्रबल है। किसी को नहीं छोड़ती, किसी को भी नहीं, दावा नगली है, दावानल अग्नि है, ये सबको जला के भस्म कर देती। नारद जी ब्रह्म ऋषि है, भगवान शिव महायोगी है, उनको भी नहीं छोड़ा ब्रह्मा जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की माया जब किसी को नहीं छोड़ सकती तो हम लोग कैसे बचेंगे, हम तो नारद जी नहीं बन सकते, हम तो भगवान शिव की तरह साधना नहीं कर सकते। भगवान शिव कौन है, महावैष्णव है, वैष्णव नाम यथासंभव, महावैष्णव है। जब महावैष्णव भी इस चक्कर में फंस जाते हैं तो हमारा फंसना कौन सा आश्चर्य, क्यों आश्चर्य, क्या आश्चर्य है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने बताया, जैसे जगत में, जैसे वन में आग लग जाए और नदी में कोई हाथी स्नान कर रहा हो शीतल जल में, तो क्या वो हाथी उस अग्नि का जो आग लग रही उसका जो दुख का अनुभव करेगा, नहीं करेगा। और क्या फिर वो वहां से निकल के उस वन में जाएगा जहां आग लग रही है, नहीं जाएगा, ना तो वहां जाएगा और ना उसका अनुभव करेगा, क्यों, मस्ती में है। तो ठीक उसी प्रकार से जो भगवान की शरण चला जाता है, जो भगवान की शरण में रहता है, उस पे भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें भगवान की शरण तत्काल ग्रहण कर लेनी चाहिए, जिससे जैसे उन्होंने बताया कि इस प्रकार का जो माहौल, जैसा कि हम लोग स्त्रियों की पुरुषों की जो चर्चा सुनते आ रहे हैं, इससे बच सकें। कई दोष हैं, कई गुण हैं, और दोष गुण दोनों मिलकर के ये हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, देवी देवता सब में रहते हैं। गुण अवगुण सबके उर बसहिं, सबके उर में रहते हैं, कई बार इंक्रीज कर जाते हैं, कई लोगों के इंक्रीज करते नहीं जीवन भर। टीवी सबको होती है, लेकिन बहुत जब कमजोरी आ जाती है विशेष, तो वो टीवी स्पष्ट रूप से आ जाती है, कब बात पित्त बन जाता है। लेकिन जब ताकत रहती है शरीर में, अच्छा पौष्टिक खाना पीना दिनचर्या ठीक रहती है, तो टीवी दबी रहती है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग के अंदर अवगुण हैं, लेकिन वो दबे रहते हैं। गुणों की प्रधानता ज्यादा रहती है, इसलिए वो गलतियां नहीं करता, उसको ज्ञान हो जाता है, उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष, धार्मिकता में लीन। तो ठीक उसी प्रकार से जो ये कह रहे हैं कि दस पुत्रों को जन्म दिया, दसों के दसों कैसे निकले, उत्तम पुरुष थे और पूर्णतः धार्मिक थे और पूर्णतः ज्ञानवान थे, ज्ञान में भी पूर्ण थे। कब थे, जब उन्होंने शरणागति स्वीकार किया। शरणागति कैसे स्वीकार किया, फहर्सी का जो चरित्र हम सुन रहे हैं कि हमेशा यज्ञ दान पुण्य उसी में लगे रहते थे। और उनकी पत्नी कौन है, शतदुत्या, और ये है कौन, समुद्र की पत्नी, समुद्र की बेटी। और समुद्र की बेटी, समुद्र महावैष्णव है, समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी, अगर उस दृष्टि से थोड़ा आगे बढ़ाएं तो लक्ष्मी जी की बहन हो गई, तो क्या साधारण होंगी, क्या वो साधारण पुत्रों को जन्म देंगी, क्या वो भक्त पुत्र भक्त नहीं होंगे, सभी पुत्र भक्त थे। क्यों, कि जैसा आचरण करते हैं कोई प्रभाव संतान में आता है। वैसे प्राय करके जैसा पत्नी का हम सुनते आ रहे हैं, कल प्रभु जी बता रहे थे हमारे पूज्य सार्वम प्रभु, पत्नी का क्या परिभाषा है, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया, पतन, जो पति का पतन ना होने दे। कहने का तात्पर्य कि वो एक दुर्ग है पति के लिए, एक किला है, एक बाउंड्री वाल है, कि पति को उस बाउंड्री वाल से बाहर नहीं जाने देती अपनी इच्छा के अनुसार भोग भोगने के लिए। और पति कौन है, उसका रक्षक है, और रक्षक भी पूर्ण रक्षक, जैसे भगवान राम का उदाहरण दिया, भगवान राम पति की पत्नी की रक्षा करने के लिए 7 समुद्र चले गए। कितना कठोर, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, रात दिन रोए तड़फे, हाय ये तो मेरा जो मर्यादा का संकल्प था वो लेने से पहले टूट गया। एक साधारण व्यक्ति भी अपनी पत्नी की इतनी अच्छी रक्षा करता है और मैं सर्व समर्थवान होकर के पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या आपने कहीं मेरी सीता जी को देखा है? लता पताओं से पूछ रहे हैं, पागल जैसे हो गए। लेकिन नहीं, वो पूर्ण पुरुष हैं, वो गए और सात समुद्र जाकर के भी पत्नी की सहज सम्मान के साथ रक्षा किया। अब पत्नी का भी देखो, जब उनको बचाती है, दुर्ग बना दिया उनको, तब पत्नी भी क्या, जब तू यहां रक्षा करने आया तो मैं जीव मात्र की रक्षा कर दूंगी। उन्होंने जितने पतित आत्मा वहां थे भगवान राम को अपने बहाने बुला करके सबका उद्धार करा दिया। क्या रावण के कुल का उद्धार होता अगर मां जानकी नहीं जाती तो? अगर स्त्री वहां नहीं होती तो क्या उसका उद्धार होता? कभी नहीं होता। इधर द्रौपदी को देख लो, एक द्रौपदी ऐसा कारण बनी जिन्होंने सभी कौरवों का सभी को भगवत धाम पहुंचा दिया, सबको मुक्त कर दिया, माध्यम बनी। इधर जब भगवान की मां देव की और वसुदेव का विवाह हुआ, उस समय रथ पे आरुण होकर के कंस उनको लेके जा रहा है, आकाशवाणी हो गई, हे राजा कंस, इसी बहन का आठवां लाल तेरा काल होगा। अरे उसी क्षण उतरे, खड़ग निकाली और केस पकड़ लिए और मारने को तैयार। और लाख प्रयास करने के बाद भी कंस माना नहीं। तब वसुदेव जी ने बहुत समझाया, बहुत उपदेश दिए, लेकिन कंस की समझ में आने वाला नहीं है। तब उन्होंने देखा कि अब और कोई युक्ति देखता हूं, और उन्होंने तुरंत भगवान को स्मरण किया कि प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है, और आज अगर मैं पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं पति कहलाने योग्य नहीं हूं, और ये रक्षा हो नहीं पाएगी। भगवान की शरण में चला गया और मन से स्मरण किया, और जैसे ही गया तो भगवान क्या करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, तुरंत योग बुद्धि प्रदान करते हैं। कैसी? ये नाम पयांते, जो उनको प्राप्त कर लेता है। कैसी योग बुद्धि प्रदान की? अब तुम नम्रता से पेश आओ। और उन्होंने उपाय बताया कि भाई हम लोग आपके बंदी गृह में रहेंगे, जो संतान होगी आपको देते जाएंगे, और उनको बचा लिया और पूर्ण पति बन गए रक्षक। कहां पत्नी की, काम दाम दंड भेद नम्रता से पैर पकड़ के जैसे तैसे मैंने रक्षा कर लिया, जैसे भगवान राम ने किया। तो वसुदेव जी ने ऐसे ही रक्षा किया देवकी की। अब देवकी का क्या फर्ज होता है? देवकी ने सोचा कि इतने संकट से मुझे बचाया है, वास्तव में परफेक्ट पति है, अब मैं क्या करूंगी, अब ये तो बंदी में है, अब क्या जेल में कभी सुख हो सकता है? वहां स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता से सांस भी नहीं ले सकते आप, कुछ गुनगुना भी नहीं सकते, कीर्तन भी नहीं कर सकते, नार में तो हथकड़ी बेड़ी सब पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में भी देवकी ने क्या किया, उनको भगवान का बाप बना दिया कि मैं पत्नी हूं तो देख मैं भी कुछ करके दिखाती हूं, और उन्होंने स्वयं भगवान को प्रकट कर दिया। ऐसे बंदी गृह में जहां की कोई साधना का साधन नहीं है, कोई मंगला आरती नहीं है, कोई नित्यम भागवत सेवया नहीं है, लेकिन धन्य है माता। तो माताओं को जितना भी आप बढ़ाई करें, जितना भी गुणों का बखान करें, उतना ही कम है। जितने बार भी भगवान आते हैं वो माताओं के माध्यम से ही आते हैं। हालांकि भगवान जड़ में चेतन में सभी में है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होते में जाना, भगवान शिव कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, हर व्यापक है, सब जगह व्याप्त है। अरे व्यापकता नहीं होती तो खम से कैसे प्रकट होते, खम से प्रकट हो गए। तो ये पत्नी और पति दोनों की अपनी अपनी परिभाषा है, और ठीक उसी प्रकार से आगे जो चल रहे हैं हम लोग, हमारा मन इतना विलसित हो जाता है माताओं को देख के, माताओं का प्रभु को देख के, तो ये क्या है, माया का प्रभाव है। इस माया से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, और वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान राम सात समुद्र पार गए, किसकी रक्षा करने के लिए, और प्रभुपाद जी सात समुद्र पल्ली पार गए अपने सुहृदयों की रक्षा करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए। और कितना दुख पाया, जैसे भगवान राम ने दुख पाया जाते समय, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, बिना न मानन जड़ जड़ गए तीन दिन बीत, अब बोले राम संकोप तो भय विन होतना प्रीत, नहीं मान रहे तीन दिन। यहां एक एक क्षण भारी हो रहा है लक्ष्मण जी को, अपनी माँ की जब वेदना सुनी, जब हनुमान जी ने आके बताया कि माँ जानकी इतने संकट में, इतने दिन के बाद शरीर छोड़ देगी अगर आपका दर्शन नहीं हुए तो, ये मैसेज दे दिया हनुमान जी ने। उसके बाद लक्ष्मण जी तो एक एक सेकंड भारी हो गया कि मेरी माँ इतनी परेशान है, नहीं आप जल्दी करिए चलेंगे, नहीं तीन दिन हो गए, जात दिवस नहीं लागत मारा, दिन जाने में देर थोड़ी लगती है, प्रभु क्या कर रहे हैं आप। इतना कष्ट भगवान राम ने सहन किया, क्या प्रभुपाद जी ने कम कष्ट सहन किए सात समुद्र पार करने के लिए। दिल का दौरा पड़ गया, कभी गए नहीं पानी के जहाज में, पहली यात्रा, पैसे भी नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन चले जा रहे हैं केवल कृष्ण भरोसे पे, केवल भगवान के भरोसे पे। और उनको जाकर के वो साधन दिया कि परम सुखी कर दिया, और ऐसा साधन दिया कि मैं तो सात समुद्र पार आया ही हूं, तुमको तो मैं भवसागर से पार करने आया हूं, और भवसागर से पार किया, और ऐसी नौका में बैठा दिया भवसागर से पार करने के लिए। अब उनको कोई टेंशन नहीं है, रिजर्वेशन बॉम्बे का हो गया तो ट्रेन मथुरा में नहीं उतारेगी तुमको, बॉम्बे जाके उतारेगी। ऐसा नहीं है रास्ता भूल जाए ट्रेन और कहीं चला जाए, नहीं, अब तुमको एक ऐसे साधन में प्रभुपाद जी ने बैठा दिया पूरे वर्ल्ड को कि अब उनको ये सोचना नहीं है कहीं ट्रेन ऐसा ना हो रास्ता भटक जाए और इधर उधर चला जाए, नहीं, अब वहीं उच्च स्थान गोलोक धाम ही जाएगा। और वो कौन सी नौका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी को दे दिया और सभी लोग आज परम सुख का अनुभव कर रहे हैं पूरे विश्व में, सभी लोग भगवान को भगवान के रूप में जान रहे हैं। लेकिन भगवान कब जानते हैं, भगवान कब प्रसन्न होते हैं, जब उनकी शरण में कोई जाता है, और जब तक कोई शरण में नहीं जाता भगवान किसी को कोई परवाह नहीं करते। प्रभुपाद जी कंप्लीट शरण में थे, भगवान ने खुद आकर के कैप्टन बन गए। ऐसे ही माँ देवती, जब तक उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, जब तक उनकी शरण में नहीं गए, उन्होंने उपदेश नहीं सुनाया। जब पिता भी जा चुके हैं, लेकिन जब तक माँ ने उनकी शरण ग्रहण नहीं किया, माँ हैं, देखो भगवान की, अब इसको दयालुता बोलेंगे क्या बोलेंगे, एक कठोर नियम पकड़ रखा है, नहीं तू एक बार कहे कि मैं तेरा हूं, अब फिर देख, कहना पड़ेगा कि प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपका हूं, तब मैं आपकी रक्षा करूंगा, योगक्षेम बाह्म्यम, उससे पहले नहीं। और यह निश्चित मान, जब तक तू मेरी शरण नहीं आएगा मैं कोई भी एक्शन नहीं लूंगा, साक्षी गोपाल बन के बैठ जाऊंगा। तो मां ने शरण लिया, और मां ने क्या कहा, तीसरे स्कंद में आता है वर्णन। इधर अर्जुन ने जब तक ये नहीं कहा, शिष्ते हम साध साध माम तो हम प्रपन्नम, प्रभु अब मैं तुम्हारे, जब शिष्य बन गए और मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे उपदेश दो, तब भगवान ने उपदेश शुरू किया, उससे पहले नहीं। एक बार जब अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन रथ लेके जा रहे थे, भगवान रथ चला रहे हैं, तो अश्वत्थामा ने देखा कि ये मेरा पीछा कर रहा, छोड़ेगा नहीं, निश्चित रूप से मुझे पकड़ लेगा और मुझे मार डालेगा और कठोर दंड देगा। तो अश्वत्थामा बहुत चतुर था, वो रथ छोड़ के भाग गया, और जैसे रथ छोड़ के भागा तो अर्जुन भी तो कम नहीं था, अर्जुन ने भी रथ को छोड़ दिया, चल कहां जाएगा, अब वो भी दौड़ के उसके पीछे लग गया, अब भगवान रह गए अपना सारथी बन के। वो तो डर से भागा और ये अवमान से भागा कि तू कहां जाएगा, पकड़ लिया उसको जाएगा, और जैसे ही पकड़ना चाहा उनको, उन्होंने क्या किया, मरता क्या नहीं करता, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और वो ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, उतारना नहीं जानता था। जब छोड़ दिया तो तपने लगा, इधर इसने भी छोड़ दिया, अब तो तपने लगा अर्जुन, एकदम अग्नि में तपने लगा, अब घबराया, प्रभु प्रभु बचाओ बचाओ, भगवान शरण में आया। और जैसे ही शरण में आया तो भगवान ने उपाय बताया, भाई तुम तो उतारना जानते, दोनों को उतार लो। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान से क्षण भर के लिए दूर हुआ, रथ छोड़ के चला गया, थोड़ा विचार करिए, थोड़ा सा अवमान आ गया, अभी पकड़ता हूं ना मैं, देखता हूं, अरे भगवान के बल पे तो सबका हो रहा है और तो उन्हीं को बैठे छोड़ गए। और जैसे ही क्षण भर के लिए गया, संकट ने घेर लिया। जब अर्जुन क्षण भर के लिए गया, उसने संकट ने घेर लिया, हम लोग तो हमेशा ही दूर हैं उससे, क्या हम संकटों से उनके ग्राहक नहीं बन जाएंगे संकटों के? क्या संकट हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाएंगे? निश्चित रूप से हो जाएंगे। इसलिए हमें, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि जो नव द्वारे पूरे गई, नौ द्वार हैं, कितना आश्चर्य, फिर भी इसमें जीवात्मा बैठा हुआ है। तो जिसमें नौ द्वार हो, नौ छिद्र हो, उसमें तुम जल भरो, क्या रुकेगा जल? नहीं रुकेगा। तो उसको कैसे भरा जाए? ना जमनाजी में रख दो, भरा रहेगा। तो हमें हमेशा भगवत चर्चा में ही रखना है। और प्रभुपाद जी ने ऐसा ही जमुना जल बना दिया। कैसे? मंगला आरती, गुरु पूजा, जप करो, भागवत क्लास सुनो, प्रसाद ग्रहण करो, 24 आवर कीर्तन बैठ जाओ, अपने अपनी सेवाओं में लग जाओ। तो आपको कोई भी बाहरी और आपका जो जो मन में विकार है वो कहीं भी बाहर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जब तक अर्जुन ने शरण ग्रहण नहीं किया, तब तक भगवान ने उसकी, और ऐसे मां देवहूति ने जब तक उनसे नहीं कह दिया कि मैं प्रभु आपकी शरण में हूं, तब तक त्वम त्वाम शरणम त्वम ताम गताहम शरणम शरण्यम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, ये संसार रूपी जो पेड़ है उसको काटने के लिए आप, जो भवसागर रूपी जो पेड़ है उसको काटने के लिए आप कौन है? कुठार है आप। मुझे पुरुष और प्रकृति में क्या वो है ये मुझे समझाइए, मैं आपकी शरण हूं प्रभु, मैं आपकी हूं। तब भगवान उपदेश शुरू किया। और इतना ही नहीं, भगवान का कोई मित्र हो, कोई सखा हो, सगा संबंधी हो, रिश्तेदार हो, या भगवान से किसी प्रकार के नाते से जुड़ा हो, जैसे माँ, अरे यहां तक कि नंद बाबा जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, नंद बाबा को जब तक मदद नहीं किया तब तक वो उनकी शरण में नहीं चले गए। कहां पे? दसवां स्कंद, 34वां अध्याय और 6वां श्लोक। क्या बोल रहे हैं वो? वो कह रहे हैं जब वो था ना, क्या बोलते हैं, अंबिकावन, अंबिकावन में जब गए नंद बाबा, एक कथा तो लंबी है आप सब जानते होंगे, तो जो सरस्वती के किनारे भगवान नंद बाबा अपना छकरा लेकर के गोपों के साथ जा रहे थे, रात्रि हो गई तो सरस्वती किनारे सब लोग सो गए, तो वहाँ अजगर रहता था और अजगर भूखा था, और वो आया, नंद बाबा सो रहे, नंद बाबा को पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा, नंद बाबा की आंखें खुली और देखा, अरे, तो उनको आश्चर्य हुआ और जोर जोर से चिल्लाए वो, और क्या कहे उन्होंने, सह चुक्रो सहना ग्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयम, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ, क्या सर्पो माम ग्रस्ते तात, हे तात, हे पुत्र, ये सर्प मुझे ग्रह खा रहा है, ग्रस रहा है, खाना ग्रस रहा है, हैं, प्रपन्नम परमोचय, मैं आपकी शरण हूं, मुझे बचाओ, ये सांप, मुझे सांप एक्चुअली खाता नहीं है, वो ग्रसता है धीरे 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 धीरे, जैसे किसी को दबाते हैं ना ऐसे, वो धीरे धीरे ग्रसता है, ऐसे ही। हालांकि उन्होंने तो उदाहरण दिया कि मुझे सांप खा ही रहा था, भगवान गए और उनको रक्षा किया। भगवान कहते हैं कि तू मेरा बन तो सही, मुझे पुकार तो सही, तभी तो रक्षा करूंगा, जब मैं अपने पिता की रक्षा नहीं कर सकता उसके बगैर, ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरी एक मर्यादा है, अगर मैं बिना शरण में आए हुए रक्षा करूंगा तो फिर मुझे जो जो पापी तापी हैं, जो हमेशा पाप कर्म में लीन है, संसार में लीन है, उनके लिए बार बार दौड़ के आना पड़ेगा, फिर किसी को भजन करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, मैं तो ऐसे ही दौड़ता रहूंगा। इसलिए शरण ग्रहण करो। अच्छा, सभी को सांप खा रहा है, लेकिन नंद बाबा सचेत हो गए, जैसे ही पकड़ा, पकड़ते एक साथ, लेकिन हम लोग सचेत नहीं हो रहे, हमको भी सांप ग्रह रहा है, काल रूपी, काल के ब्याल के त्रास से, काल निर्णय से हेतवे, ये जो जो काल है, काल रूपी जो सांप है, वो हमको धीरे धीरे ग्रस रहा है। सफेद बाल हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, दांत चले गए, अब क्या होगा, फूड फॉर लाइफ, खिचड़ी खाओ, कि दांत रहे नहीं। प्रभुपाद जी ने इसलिए पहले ही सिस्टम बना दिया कि ये या स्टेज तक आएंगे तो इसलिए पहले ही फूड फॉर लाइफ शुरू कर दो, खिचड़ी बनाओ और खिचड़ी खाओ, दाल चावल। तो इसीलिए जो प्रभुपाद जी की जो सोच थी वो परफेक्ट थी, जो आज हम देख रहे हैं वो उन्होंने पहले ही देख लिया। तो ये सांप सबको खा रहा है, काल रूपी जो सांप है, दिन रोज हम लोग कहां जा रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ, फिर उसके बाद में चले जाएंगे, फिर जन्म होगा, फिर बड़े होंगे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम एह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़। फिर भी गोविंद को नहीं भज रहा है, फिर भी उसकी शरण ग्रहण नहीं कर रहा है। लेकिन हमें, अगर हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य कहलाने के योग्य हैं, तो मनुष्य की यही परिभाषा है जो आज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पूर्ण मनुष्य, मनुष्य तभी पूर्ण माना जाता है जब वह पूर्णतया धार्मिक हो और अपनी शक्ति अपनी भक्ति के व्रत में पूर्ण हो और ज्ञान में पूर्ण हो और उत्तम आचरण करने वाला हो। तो बताओ, सभी हम लोग मनुष्य बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे? सभी चाहेंगे। ऐसे ही पुत्र, ऐसे ही मां। मां किसको कहते हैं? मां कहलाने के योग्य कौन है? हैं? मां कहलाने के योग्य कौन है? किसको मां कहते हैं? बड़े आश्चर्य की बात है, जब भगवान राम वन को जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी प्रभु आपके साथ चलूंगा, तो भगवान ने कहा अरे अभी संकल्प भी नहीं लिया मर्यादा का तुमने तोड़ दिया। कैसे? बोले मुझसे बड़े बैठे हुए हैं, पहले उनसे परमिशन लो, उनसे आज्ञा लो, पिता में पिता हैं, माँ हैं, तीन तीन माता हैं, आपने ऐसे निर्णय ले लिया मैं चलूंगा। वो दौड़ के गए, समझ गए सारे को कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये चैनल के थ्रू चलते हैं, दौड़ के गए और जाके माँ के पैर पकड़ लिए, माँ माँ मुझे आज्ञा दो, भगवान निकलना चाहे, बिल्कुल गेट से निकल चुके हैं वो, मुझे मिलेंगे नहीं, प्लीज जल्दी करो। तो माँ ने क्या कहा, पुत्रवती जुगती जग सोई और रघुपत भगत जास सुत होई। अरे बेटा, पुत्रवती माँ तो वही माँ कहलाने के योग्य है जिसका बेटा भगवान का भक्त है, रघुपत भक्त है, दौड़ के जा, निकलना गए हो। लक्ष्मण जी को तुरंत भेजा, बोले मैं तो आज पुत्रवती बन जाऊंगी, आज तुमने मुझे सिद्ध कर दिया कि मैं पुत्रवती हूं, दौड़ के जा और भगवान की सेवा कर। तो पुत्रवती माँ वही माँ है जिसका बेटा भगवान का भक्त है, अगर भक्त नहीं है तो फिर कौन है वो? प्रसन्न तो आएगा ना उठ के, उसने पुत्र को जन्म तो दिया ही है, और वो पुत्र भगवान का भक्त नहीं है तो फिर वो माँ कौन है? क्या वो माँ नहीं है? तो बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है, नतर बांज बल व्याई समाना। वो तो फिर जैसे घर में तीन क्रियाएं होती हैं, एक बच्चा जन्म लेता है, जी बच्चा हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है जी, उनका पोता हुआ है जी, नाती हुआ है, खुशियां मनाते हैं, और उसी घर में गाय भी बच्चा देती है, क्या बोलते हैं, गाय ब्याई है जी, गाय ब्याई है उनके यहां, और उसी घर में भगवान भी जन्म लेते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान का आविर्भाव हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान अवतरित हुए हैं, तीनों के लिए अलग अलग संबोधन है, क्या बोलते हैं, उसके घर में एक लड़का अवतरित हुआ है या एक लड़का प्रकट हुआ है, कोई नहीं बोलता। तो वो क्या, नतर बांज, या तो फिर वो माँ बांज के समान है, उसने पुत्र को जन्म दिया ही नहीं, भूल जाओ, या ब्याही समान है या फिर पशु के समान है, अगर वो बच्चे में ये संस्कार नहीं दे पाई कि भगवान का भक्त होना चाहिए। और ये संस्कार केवल प्रयास करो, करने वाला कृष्ण है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना है, धार्मिक रीति से अपना जीवन आचरण करना, उस आचरण का प्रभाव उसको पड़ेगा, प्योरिटी द फोर्स। तो ये जो है इन दोनों का प्राचीन वरी और सत्यदुत्या के दस पुत्र थे, वो दसों पुत्र भगवान के पूर्ण मनुष्य थे, पूर्ण परफेक्ट भक्त थे, धार्मिक थे, उत्तम चरित्र वाले थे और ज्ञान भी उनका पूर्ण था। तो आज की हम भागवतम को यहीं पे विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो थोड़ा, तो समय तो ओवर ही हो गया। भगवान ही भक्ति देगा, भगवान से प्रार्थना करो डेली कि प्रभु मैं आपकी शरण हूं, आप परिवार को बच्चों को अच्छी मति दो, भगवत मति दो, भगवान मति हो इनकी, भगवान में मति लगे। कई लोग एक श्लोक बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया बोलते हैं ना, तो प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी सुखी हों। सुखी कब होंगे? जब भगवान की शरण में जाएंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, उन्हीं के चरणों में सुख है।